पुरातत्व का मानविकी और विज्ञान से संबंध। पुरातत्व लिपि के आविष्कार से पूर्व के काल के मानव इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। लिपि ज्ञान से युक्त कालों के मानव पृष्ठ संख्या 8 इतिहास के अनेक पक्षों के विषय में भी पुरातत्व महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। पुरातत्व कई विषयों से साक्ष्यों के संकलन एवं व्याख्या के संबंध में सहायता लेता है। मानविकी, ह्यूमैनिटीज तथा प्राकृतिक विज्ञानों, नेचुरल साइंसेस के साथ इस प्रकार पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया जा सकता है। इनमें से इतिहास, भूगोल, नृतत्व विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि मानविकी के प्रमुख विषयों के साथ पुरातत्व के निकट संबंध को स्पष्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में भूतत्व विज्ञान, जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान बॉटनी एवं प्राणी विज्ञान जियोलॉजी आदि का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है। पुरातत्व और मानविकी। इतिहास तथा पुरातत्व दोनों ही विषय मानव के अतीत काल के विषय में अध्ययन करते हैं। इतिहास शब्द का यदि व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो इसके अंतर्गत मानव के अतीत के विषय में आदिकाल से लेकर कुछ पीढ़ियों पहले तक के कालों के संबंध में किए जाने वाले सभी प्रकार के अध्ययन एवं अनुसंधान आ जाते हैं। पुरातत्व और इतिहास, इन दोनों शब्दों का विभिन्न विद्वान अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। पुराविद इतिहास का अपेक्षाकृत संकुचित अर्थ ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार इतिहास उन कालों या मानव समूहों के संबंध में अध्ययन करता है जो किसी न किसी प्रकार की लिपि का प्रयोग करते हैं। इतिहास के सामान्य ज्ञान के बिना पुरातत्व का अध्ययन संभव नहीं है। इतिहास की रचना मनुष्य द्वारा की गई है। इतिहास का आधार वास्तविक घटनाएं हैं। वास्तविक घटनाओं के साक्ष्यों के की व्याख्या इतिहास कहलाता है। वस्तुनिष्ठ ज्ञान होते हुए भी इतिहास के लेखन की शैली अलग अलग होती है। इसके अलावा इसमें व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के घात प्रतिघात के फलस्वरूप अनेक दूरगामी परिवर्तन घटित हो जाते हैं। इतिहास में नामधारी व्यक्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जबकि पुरातत्व में अज्ञात नामा व्यक्तियों तथा समाजों का मुख्यतः प्रतिपादन मिलता है। पुरातत्व एवं इतिहास दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरक हैं। पुरातत्व को इतिहास की एक शाखा मात्र माना जाए या स्वतंत्र विषय, इसमें विवाद है। भूगोल, मानव के सांस्कृतिक विकास पर भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव के भौतिक और सांस्कृतिक उपादान बहुत कम थे, पृथ्वी तल पर घटित होने वाली भौगोलिक घटनाओं का उसके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए प्रतिनूतन काल के जलवायु संबंधी तीव्र उतार चढ़ाव के साथ मानव के विकास का इतिहास अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। वनस्पति, जीव जंतु तथा पृथ्वी तल पर प्रवाहित होने वाले जल की पृष्ठ संख्या 9 मात्रा का पुरातात्विक अध्ययन के लिए ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानव के सन्निवेश सेटलमेंट पैटर्न संबंधी अध्ययन के लिए भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। जनसंख्या का वितरण, संसाधनों के दोहन आदि के अध्ययन के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। नृतत्व विज्ञान में मुख्यतः मानव के भौतिक, शारीरिक बनावट आदि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषा आदि से संबंधित ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आदिम प्राइमिटिव जातियों के आचार विचार तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में नृतत्व विज्ञान विशेष रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं पुरातत्व को प्रदान कर सकता है। आदिम जनजातियों के आर्थिक जीवन में आखेट, कंद मूल एवं फल आदि खाद्य पदार्थों के संचय का क्या स्वरूप था, इसके संबंध में भी नृतत्वविद महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन पुरातत्व संबंधी अध्ययन में ऐसे साक्ष्यों का उपयोग बहुत सूझबूझ एवं समझदारी के साथ करना पड़ता है जिन्हें आजकल आदिम जनजातियां कहा जाता है। उनका भी अपना अत्यंत लंबा इतिहास है। वे भी समय के साथ निरंतर प्रगति करती रही हैं। यह दूसरी बात है कि उनकी प्रगति की गति बहुत मंद एवं क्षीण रही है। समकालीन समाजों का भी जनजातियों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। यदि हम जनजातियों के अध्ययन से प्राप्त सांस्कृतिक साक्ष्यों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने के लोभ का संवरण नहीं कर सकेंगे तो पुरातत्व के माध्यम से हम जो तथ्य खोजना चाहते हैं उनकी पहल से भी परिकल्पना करने की भूल कर बैठेंगे। इसके अलावा नृतत्व विज्ञान तथा पुरातत्व दोनों में कुछ अन्य मूलभूत अंतर हैं। नृतत्व विज्ञान में वर्तमान मानव समुदायों के संबंध में अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, लेकिन पुरातत्व में विलुप्त एक्सटिंक्ट मानव समाज एवं मृत मानवों का अध्ययन किया जाता है। पुराविद मानव के स्थान पर उनकी कृतियों, उपकरणों और उसकी क्रियाकलापों से संबंधित स्थल अथवा स्थलों का अध्ययन करता है। नृतत्व विज्ञान में प्रधान रूप से मानव के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि पुरातत्व में मनुष्य के बजाय उसकी कृतियों, उपकरणों एवं औजारों तथा पुरावशेषों के अध्ययन को प्रमुखता दी जाती है। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में मानव समाज की संरचना एवं उसकी विभिन्न प्रकार की रीति प्रथाओं एवं संस्कारों आदि का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्वविद के लिए अतीत की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी आवश्यक है। प्रारंभिक समाज मातृसत्तात्मक या मातृमूलक था अथवा पितृमूलक, इसकी जानकारी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होती है। समाज में स्पष्ट सामाजिक वर्ग कब उदित हुए, परिवार, समूह, विवाह आदि सामाजिक संस्थाओं का कब और कैसे उदय हुआ है, पुरावेद के लिए उनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 10। लुंद विश्वविद्यालय स्वीडन के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर स्वेन निल्सन 1787 से 1888 ईस्वी ने सर्वप्रथम मानव समाज को एक वन्यता, सेवेजरी, दो यायावर पशुचारण नोमेड, तीन स्थायी कृषि सेटल एग्रीकल्चर, चार सभ्यता सिविलाइजेशन, इन चार कारणों में विभाजित किया था। एडवर्ड टाइलर 1832 से 1917 ईस्वी एवं एलएच मार्गन 1818 से 1881 ईस्वी नामक दो सुप्रसिद्ध नृतत्ववेत्ताओं ने इस चतुर्विध विभाजन में परिष्कार एवं संशोधन किया। पुराविदों के लिए इस प्रकार के अध्ययन के महत्व के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान, साक्ष्य संकलन के लिए पुरातत्व प्राकृतिक विज्ञानों पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है। इनमें से निम्नलिखित प्राकृतिक विज्ञानों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। भूतत्व विज्ञान, भूतत्व विज्ञान का पुरातत्व से बड़ा गहरा संबंध है। स्तरीकरण का नियम, लॉ ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, पुरातत्व ने भूतत्व विज्ञान से ही लिया है। संक्षेप में इसका अभिप्राय है कि नवीन सामग्री का निक्षेप जमाव पुरातन सामग्री के ठीक ऊपर होता है। कुछ खास आंतरिक हलचलों के अपवादों को छोड़कर किसी स्थान के प्रारंभिक स्तरों पर से प्राप्त सामग्री ऊपरी स्तरों से प्राप्त सामग्री से प्राचीनतर होती है। भूपटल पर प्राकृतिक रूप से निर्मित स्तर विभिन्न भूभागों में भी समकालिक होते हैं। इसके विपरीत मानव आवास से निर्मित स्तरों में इस प्रकार की समकालिकता प्रायः नहीं होती है। पुराविदों ने अपने अनुभव से यह सीखा है कि भूतात्विक जमावों जैसे नदी, वेदिकाओं, रिवर टेरेक्स एवं अनुभागों, रिवर सेक्शंस, झीलों के किनारों तथा शिलाश्रमों में मानवकृत पुरावशेषों के मिलने की अधिक संभावना रहती है। भूतात्विक जमावों के साथ प्राप्त मानवकृत पुरापाषाणिक औजारों एवं पुरातत्व की दृष्टि से उपयोगी अन्य पुरावशेषों की तिथियां सौर वर्षों में निश्चित करना आसान नहीं है, इसलिए इनकी तिथि भूतात्विक कालों में निर्धारित की जाती है। पाषाण काल के मानव द्वारा औजार बनाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पत्थरों की किसी किस्मों एवं उनके प्राप्ति स्थानों के विषय में पुराविद भूतत्व विज्ञान के अध्ययन से लाभान्वित हो सकते हैं। पुरापाषाणिक मानव का सांस्कृतिक विकास जिन परिस्थितियों में हुआ उसकी समग्र जानकारी प्राप्त करने का भूतत्व विज्ञान एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। सच तो यह है कि मानव के उद्भव एवं विकास से के संबंध में वैज्ञानिक मत का डार्विन द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादन भूतात्विक अनुसंधानों के कारण से ही संभव हो सका। मानव के विकास के मत के प्रतिपादित हो जाने के बाद ही उसके आरंभिक इतिहास की खोज के लिए पुराविदों को आगे आना पड़ा। पृष्ठ संख्या 11। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का निरपेक्ष तिथि निर्धारण के कारण पुरातत्व में विशेष योगदान है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान संबंधी विश्लेषण आदि की परिष्कृत विधियों का भी पुराविदों के लिए अत्यधिक महत्व है। पोटेशियम आर्गन तथा रेडियो कार्बन C14 तिथि निर्धारण पद्धति ने प्रारंभिक मानव के तिथि क्रम के विषय में हमारी जानकारी में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है। पोटेशियम आर्गन K40 अथवा A40 विधि से कई लाख वर्षों पुराने उन प्राचीन पुरावशेषों का तिथि निर्धारण संभव है जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकले हुए लावा वाले जमाव में मिले हैं। रेडियो कार्बन विधि से 30-40 हजार वर्षों तक का आसानी से और 70 हजार वर्षों तक केवल कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा तिथि निर्धारण संभव है। वृक्ष वलय विधि से ज्ञात तिथियों के साथ जांच के फलस्वरूप इस संबंध में रेडियो कार्बन की विसंगतियों की और विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन इससे रेडियो कार्बन तिथियों की उपयोगिता में कोई खास अंतर नहीं आया है। रसायन विज्ञान पुरावशेषों विशेषकर जीवाश्मों का निर्माण किन रासायनिक परिस्थितियों में हुआ होता है इसकी जानकारी पुराविदों के लिए विशेष उपयोगी है। इसके अलावा उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार की पुरानिधियों के परिरक्षण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है। पुराविदों के लिए इनका सामान्य ज्ञान आवश्यक है। पुरावशेषों का संरक्षण रसायनों के बिना संभव नहीं है। वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान ने भी पुरातत्व संबंधी अध्ययन के लिए कुछ अत्यंत उपयोगी विधियों का विकास किया है जो अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु एवं पुरा वनाली के विषय में प्रकाश डालती है। वनस्पति विज्ञान का इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पराग विश्लेषण पैलिनोलॉजी को माना जा सकता है। पराग कणों पैलेंस का प्रसरण पेड़ पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया के लिए होता है। ये पराग कण प्राय नष्ट नहीं होते हैं। प्रागैतिहासिक स्थलों में अगर क्षारीय तत्व अल्कानिक एलिमेंट्स मौजूद नहीं है तो वहाँ पर पराकर मिलने की संभावना रहती है। इस प्रकार पुरातात्विक स्थलों से इकट्ठा किए गए पराग विश्लेषण के आधार पर प्रागैतिहासिक वनस्पति के प्रसार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वनस्पति की किस्म की जानकारी होने पर तत्कालीन जलवायु के विषय में अनुमान किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में पराग विश्लेषण संबंधी सफल अध्ययन किए गए हैं। इस विधि का दुनिया के अन्य क्षेत्रों के संबंध में विशेषकर पुराविदों द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है। इस विधि का सापेक्ष तिथि निर्धारण के लिए भी महत्व है। वनस्पति विज्ञान की एक अन्य प्रमुख उपयोगी विधि वृक्ष वलय विश्लेषण डेंड्रोक्रोनोलॉजी है जिसका निरपेक्ष तिथि निर्धारण के लिए पुरातत्व में पृष्ठ संख्या 12 भी उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति की ही भांति वृक्ष वलय विश्लेषण प्रणाली भी पुरातत्व के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्यतः वृक्षों में एक वलय का निर्माण एक वर्ष में होता है। इन वलयों रिंग्स की गणना के आधार पर काष्ठ के किसी एक टुकड़े की तिथि का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के वलयों के निर्माण में अंतर मिलता है। वृक्षों की आयु जलवायु के शुष्कता एवं आर्द्रता आदि का प्रभाव भी वलयों के निर्माण की प्रक्रिया में पड़ता है, इसलिए वलय गणना में उपयुक्त बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लगभग 2000 वर्षों तक का तिथिक्रम निर्धारण वृक्ष वलय विधि के रेखांकनों ग्राफ्स के माध्यम से किया जा सकता है। नवीनतम अनुसंधानों एवं शोधों से एक ऐसे संकेत मिले हैं जो कि रेडियो कार्बन तिथियों C14 में संभवतः कुछ संशोधन की आवश्यकता है। रेडियो कार्बन तिथियों की तुलना वृक्ष वलय तिथियों से करने पर दोनों में अपसारण डिवर्जेंस दिखलाई पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में ब्रिसल कोन पाइन और सिकोया जाइगेंटिया आदि कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी आयु लगभग 4-5 हजार वर्ष तक होती है। इन वृक्षों के तने काटकर वृक्ष वलयों की संगणना की गई और इस प्रकार वृक्ष वलय विधि से इनकी तिथि निर्धारित की गई। इन्हीं वलयों का जब रेडियो कार्बन विधि से तिथि निर्धारण किया गया तो इन दोनों विधियों की तिथियों में बहुत अधिक अंतर दृष्टिगोचर हुआ। इस शोध के आधार पर रेडियो कार्बन तिथियों में संशोधन के लिए सुझाव दिए गए हैं। इस प्रकार वृक्ष वलय विधि को की दोहरी उपयोगिता का पता चला। आरंभिक मानव का जीवन प्राकृतिक वनस्पति और उन वनस्पति पर आधारित उस वनस्पति पर निर्भर जीव जंतुओं पर आधारित था। इस प्रकार वनस्पति विज्ञान का पुरातत्व के साथ अत्यंत निकट का संबंध माना जा सकता है। प्राणी विज्ञान विशेषकर पूरा प्राणी विज्ञान का पुरातत्व से गहरा संबंध माना जा सकता है। पुरा प्राणीविद जीवाश्मों के अध्ययन द्वारा कालक्रम का निर्धारण करते हैं। हाथी, अश्व तथा मवेशी के जीवाश्मों के मिलने के आधार पर ही अतिनूतन काल के से प्रतिनूतन काल को जिसे मानव का काल भी कहा जाता है, अलग किया जाता है। विलुप्त एक्सटिंक्ट इंस्टिंक्ट एवं जीवित पशुओं की किस्मों एवं संख्या के आधार पर भी किसी पुरातात्विक स्थल का कालक्रम मोटे तौर पर निर्धारित किया जा सकता है। वनस्पति वेत्ता की ही भांति पुरा प्राणी वेत्ता अतीत की जलवायु के विषय में पुराविद को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। मानव की भोज्य सामग्री के संबंध में भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश प्राणी विज्ञान डाल सकता है।